हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 120। रुद्र ये सब बोलते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। कास्टिंग डायरेक्टर की ऐसी हालत और रुद्र के ऐसे शब्द सुनकर करण काफी कुछ समझ गया, क्योंकि रुद्र के साथ ही हर्षिता भी खड़ी थी और वो बहुत ही गुस्से और नफरत भरी नजरों से उस डायरेक्टर को देख रही थी। रुद्र को इतने गुस्से में देखकर जतिन आगे आया और उससे पूछा, क्या हुआ सर, ऐसा क्या किया इसने, ये तो वहां पर मॉडल सिलेक्शन का काम देखता है। वो सब हंगामा देखकर करण दरवाजे पर ही रुक गया था। अब तक वो शिविका से कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन रुद्र की आवाज जैसे ही शिविका के कान में पड़ी, वो खुद वहां बाहर आ गई और आगे आते हुए बोली, कुछ बताओगे रुद्र, क्या हुआ है, ये इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो और ऐसे क्यों मारा है तुमने इसे। रुद्र शिविका की बात का जवाब दे पाता उससे पहले ही हर्षिता आगे आ गई और शिविका की बात का जवाब दिया, ये तो कुछ भी नहीं है दी, ये घटिया आदमी तो इससे भी कहीं ज्यादा पनिशमेंट डिजर्व करता है, और अच्छा ही हुआ जो इसका ये हाल है, रुद्र ने अच्छा सबक सिखाया। हर्षिता की बात सुनकर शिविका के माथे पर बल पड़ गए, उसकी दोनों आईब्रो ऊपर उठकर आपस में मिल गईं और वो टेंशन से कुछ सोच रही थी। उसे काफी कुछ समझ आ रहा था, लेकिन फिर भी वो पूरी बात जानना चाहती थी। शिविका ने हर्षिता से पूछा, हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन मुझे पूरी बात बताओ, क्या यही वजह थी जो तुम आज फिर से यहाँ नहीं आना चाहती थी। उसके बाद रुद्र और हर्षिता ने मिलकर सभी को उस नीच कास्टिंग डायरेक्टर की करतूतें बता दीं। वो पहले से ही काफी दर्द में था, लेकिन फिर भी अपना कारनामा सुनते हुए वो वहीं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और उन सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई थी और बस इसीलिए मैंने इसे ऐसा ऑफर दिया, बाकी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। हर्षिता और रुद्र की बात सुनकर शिविका का गुस्से से खून खौल उठा। शिविका के साथ ही करण को भी ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि कुछ देर पहले ही हर्षिता ने उसे भैया कहकर बुलाया था, इसलिए वो भी अब उसे अपनी बहन की तरह ही मान रहा था। इसलिए शिविका से पहले वो गुस्से में आगे आया और उसने उस कास्टिंग डायरेक्टर का कॉलर पकड़कर उसे खड़ा किया। जलती हुई नजरों से घूरकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई कमीने, तुझे तो छोड़ेंगे नहीं हम, जतिन पुलिस को कॉल करो अभी। करण की ये बात सुनकर वो डायरेक्टर उसके सामने हाथ जोड़ता हुआ गिड़गिड़ाकर माफी मांगते हुए बोला, नहीं नहीं सर, प्लीज मुझे माफ। जैसे ही करण ने उसके मुंह से माफी शब्द सुना, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसकी दाहिनी आंख पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गया और बाकी सारे लोग भी अपनी अपनी जगह से थोड़ा सा साइड हो गए, क्योंकि आज पहली बार ही उन लोगों ने करण को इतने गुस्से में देखा था। शिविका भी नहीं चाहती थी कि करण गुस्से में वहां पर सबके सामने इस तरह का कोई हंगामा करे, इसलिए वो आगे आकर करण का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ करते हुए बोली, रहने दो करण, ये इस लायक नहीं है और हम इसे पुलिस के हवाले करेंगे, वो भी प्रूफ के साथ। शिविका भले ही करण को समझा रही थी, लेकिन उसे खुद भी उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसकी तरफ देखकर दांत पीसते हुए बोली, लेकिन इसकी हिम्मत कैसे हुई यहां मेरी कंपनी में रहकर ये सब कुछ करने की। इतना बोलते हुए शिविका उसके सामने आकर बोली, क्या सोचकर किया था तुमने ये सब, कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा, तू बच जाएगा ऐसी हरकत करके। और इतना बोलते हुए शिविका ने भी गुस्से में अपना हाथ साफ करते हुए उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस कास्टिंग डायरेक्टर में अब जरा सी भी जान नहीं बची थी, इसलिए वो लुढ़क कर वहीं जमीन पर गिर गया। उसे वहां अपने पैरों के पास गिरा देखकर शिविका ने गुस्से में उसे एक लात मारी। वहां की सारी लड़कियां भी गुस्से से ही उसकी तरफ देख रही थीं, क्योंकि वो सब भी अच्छी तरह से जानती थीं कि ऐसे लोग कितने कमीने होते हैं और अपनी मनमानी के लिए किस हद तक जा सकते हैं। वो लगभग अधमरा बेहोश होकर वहीं पर पड़ा था, उसकी आंखें भी बंद थीं और उस पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे वहीं गिरा हुआ छोड़कर शिविका आगे आई और हर्षिता के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, इतनी बड़ी बात, इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ और फिर भी तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। हर्षिता, क्या तुम मुझे अपनी बहन नहीं मानती, और रुद्र, तुमको कैसे पता चला इस बारे में। शिविका ने हर्षिता से शिकायत की और फिर रुद्र से पूछा तो रुद्र ने उसे पूरी बात बता दी। इस पर शिविका ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, वैसे तुम्हारा यहाँ आना ही अच्छा हुआ रुद्र, इतना बड़ा काम जो कर दिया तुमने मेरा। इस पर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, काम अभी खत्म नहीं है, अभी तो ऐसे लोगों को उनकी सही जगह पर पहुंचाना है। हर्षिता ने उससे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। ये सोचकर शिविका थोड़ी सी निराश थी और उसने हर्षिता की तरफ मायूसी से देखते हुए कहा, तुमने मुझसे ये बात शेयर नहीं की, मुझे इस बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा है हर्षिता, और गिल्ट भी हो रहा है। शिविका की बात सुनकर हर्षिता को समझ आया कि शिविका को कितना बुरा लग रहा है। शिविका को गिल्ट में देखकर हर्षिता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उसका हाथ पकड़कर माफी मांगती हुई बोली, दी
आई एम सॉरी, वो कल पहली बार ही मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैं शॉक में की और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैंने इसे तुरंत ही मना कर दिया था और फिर मुझे लगा कि मुझे अब कभी भी इसका सामना नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए अगर मैं इस बारे में किसी को ना भी बताऊं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ मुझे इंटरनली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी और हाँ, अब मुझे पता चल गया इसमें मेरी भी गलती थी, मुझे भी आपसे ये नहीं छुपाना चाहिए था, सॉरी दी। इतना सब कुछ होते हुए हर्षिता थोड़ी इमोशनल हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए तो शिविका उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई और उसकी तरफ से समझने की कोशिश करने लगी। पूरी सिचुएशन समझते हुए शिविका मेरे उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, तुम बस इतना प्रॉमिस करो कि आगे कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट होगा तो तुम मुझसे कोई सीक्रेट नहीं रखोगी और ऐसी बात छिपाने की बजाय तुरंत ही कोई ना कोई एक्शन लोगी। देखो, ऐसी बातें छुपाने से ऐसे लोगों की हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ती है हर्षिता, तुम्हें ये समझना होगा। शिविका के ये समझाने पर हर्षिता ने जल्दी जल्दी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, रुद्र ने भी मुझे यही बात समझाई है दी और अब मैं समझ गई हूँ, बट आप मुझसे नाराज़ तो नहीं होना दी। शिविका उससे नाराज़ तो नहीं थी लेकिन थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड ज़रूर थी, इसलिए उसने फिलहाल ये बात टालते हुए कहा, ठीक है, हम इस बारे में घर पर बात करेंगे हर्षिता, अभी तुम घर जाओ या फिर तुम एक बार फिर से ऑडिशन देना चाहती हो? हर्षिता ने बहुत ही मजबूती से उसकी इस बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं स्ट्रांग हूँ और मैं एक बार फिर से ट्राई करना चाहती हूँ, जब इसके जैसे गलत और घटिया लोग नहीं होंगे तो मुझे अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा है कि मुझे सिलेक्ट कर लिया जाएगा, हर्षिता ने खुश होते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर रुद्र और करण ने भी उसकी हिम्मत बढ़ाई। इसी बीच पुलिस भी अब तक वहां पर आ गई थी। शिविका और रुद्र ने पुलिस को बात करके पूरा मामला बताया और वो सीसीटीवी फुटेज भी बाद में पुलिस को देने के लिए कहा, लेकिन उनकी बातों पर भरोसा करके ही पुलिस कास्टिंग डायरेक्टर को वहां से अरेस्ट करके अपने साथ लेकर चली गई। उसके वहां से जाने के बाद हर्षिता दोबारा से ऑडिशन देने के लिए गई। इस बार शिविका से डिस्कस करके रुद्र ने अपने किसी जानने वाले दोस्त डायरेक्टर को फोन किया जिस पर उसे पूरा भरोसा था।
वो एक न्यू कमर था इसलिए उसके पास बहुत ज्यादा काम नहीं था, वो बिजी नहीं था इसलिए उसे बुलाने पर वो कुछ ही देर में वहां पर आ गया। शिविका के कहने पर वहां पर पहले से मौजूद लोगों ने उसे उसका काम समझा दिया। उस नए डायरेक्टर को हर्षिता की पहली परफॉर्मेंस का वीडियो भी दिखाया गया जो कि उसे बहुत पसंद आया और उसने कहा हर्षिता को दोबारा ऑडिशन देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बेसिस पर ही वो मेन मॉडल के लिए सिलेक्ट हो सकती है। और ये सुनकर हर्षिता बहुत खुश हुई, लेकिन फिर भी उसने एक दो मिनट का ट्रायल ऑडिशन दिया और वो भी उस नए डायरेक्टर और वहाँ मौजूद बाकी लोगों को काफ़ी पसंद आया और वो इवेंट की मेन मॉडल के लिए सिलेक्ट हो गई, जिसके लिए उसने रुद्र और शिविका के साथ साथ करण को भी थैंक यू बोला। उसके बाद शिविका ने कहा हर्षिता अब तुम्हारा काम यहाँ खत्म हो गया है और वैसे भी इतना कुछ हो गया आज, तुम भी थक गई होगी और कल से प्रैक्टिस के लिए तुम्हें जल्दी यहाँ पर आना है, आज घर जाकर रेस्ट कर लो और अपनी तैयारियाँ भी। रुद्र भी उसी बीच इवेंट का काम देखने के लिए वहाँ पर जारी रहा था तो शिविका ने उससे हर्षिता को घर ड्रॉप करने के लिए कहा, जिस पर वो मान गया। रुद्र हर्षिता के साथ वहां से अपनी कार में निकला और रास्ते में वो दोनों ही चुपचाप बैठे थे। हर्षिता पहले से काफी बेटर फील कर रही थी और उसे थोड़ा सा सदमा तो लगा था जो कुछ भी हुआ था उन सबसे, लेकिन अब वो संभल गई थी। रुद्र ने ही उसे इन सबसे बचाया था जिसके लिए अब तक उसने रुद्र को थैंक्स ही बोला था, लेकिन उसके आगे वो उससे क्या बात करे ये उसे समझ नहीं आ रहा था और वो इसी बारे में सोच रही थी। दूसरी तरफ आज जो कुछ भी उसकी नज़रों के सामने हुआ वो सब कुछ सोच सोच कर अभी भी रुद्र को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उस कास्टिंग डायरेक्टर को भले ही उन लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया लेकिन उसे अभी भी हर्षिता के लिए बुरा लग रहा था। इसके अलावा वो कार में हर्षिता के साथ बैठे हुए उसे लगा शायद हर्षिता उसके साथ कम्फर्टेबल नहीं है इसीलिए ही कुछ नहीं बोल रही है, तो फिर रुद्र ने भी कुछ नहीं बोला। हर्षिता बार बार चुपके से उसकी तरफ देख रही थी लेकिन ये सब सोचते हुए रुद्र का पूरा ध्यान सामने की सड़क पर ही था और ड्राइव करते हुए वो बहुत ही सीरियस लग रहा था। रुद्र को इतना सीरियस देखकर हर्षिता ने पहले तो कुछ सोचा लेकिन फिर एकदम से बोली, थैंक यू सो मच रुद्र, वैसे नाम लेकर बुला सकती हूँ ना तुम्हें? रुद्र ने लापरवाही से उसकी बात का जवाब दिया, हाँ तुम्हारी मर्जी, जो चाहे बुलाओ, बट फिर से थैंक्स क्यों बोल रही हो और कितनी बार थैंक्स बोलोगी, मैंने कोई इतना बड़ा काम भी नहीं किया। हर्षिता ने थोड़ी मस्ती में कहा, अच्छा तो फिर रूडी बुलाऊं क्या, इतने रूड होकर जो बात कर रहे हो, और वैसे भी मैंने थैंक्स बोला क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की ना वहां पर उस डायरेक्टर से।